और अच्छे अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इन नामों से अल्लाह ही को मौसूम किया करो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जो इसके नामों में टेढ़पन यानी कजरवी करते हैं। इन लोगों को इनके किए की जरूर सजा मिलेगी। और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मवाफिक हिदायत करती है और इसके मवाफिक इंसाफ भी करती है, और जो लोग हमारी आयात को झुठलाते हैं, हम इनको बतदरीज यानी ग्रेजुअली स्लोली गिरफ्त में लिए जा रहे हैं, इस तौर पर कि इन्हें खबर भी नहीं। आयत नंबर 183, और मैं इनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बहुत मजबूत है। क्या इन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि इनके साथी को जरा भी जुनून नहीं? नबी सल्लम की तरफ इशारा, वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाले हैं। और क्या इन लोगों ने गौर नहीं किया आसमानों और जमीन के आलम में और दूसरी चीजों में जो अल्लाह ने पैदा की हैं, और इस बात में कि मुमकिन है कि इनकी अजल यानी मौत करीब ही आ पहुंची हो? फिर कुरान के बाद कौन सी बात पर ये लोग ईमान लाएंगे? जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, इसको कोई राह पर नहीं ला सकता, और अल्लाह ताला इनको इनकी गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है। ये लोग आपसे कयामत के मुतल्लिक सवाल करते हैं कि इसका वकूअ कब होगा? आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के ही पास है। इसके वक्त पर इसको सिवाय अल्लाह के कोई जाहिर न करेगा। वो आसमान और जमीन में बहुत भारी हादसा होगा। वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप इसकी तहकीकात कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आप फरमा दीजिए, मैं खुद अपनी ज़ाते खास के लिए किसी नफे का इख्तियार नहीं रखता और न किसी जरर का, मगर इतना ही जितना अल्लाह ताला ने चाहा हो। और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझे ना पहुंचता। ये भी अकीदे से मुतलिक बात है कि अल्लाह के नबी गैब नहीं जानते थे। मैं तो महज डराने वाला और बिशारत देने वाला हूँ इन लोगों को जो ईमान रखते हैं। अल्लाह के नबी की शान, रिसालत का मुकाम पता चला। अब आगे अल्लाह ताला ने इंसानों की जो तख्लीक की, इसमें मर्द और औरत यानी शोहर और बीवी का आपस का रिश्ता क्या हो, बड़ी अहम आयत है। चूंकि हम खवातीन हैं, हमें तो अपने ही बारे में जानना है, मर्दों के लिए मर्द, औरतों के लिए औरतें। लेकिन यहाँ एक कोड वर्ड देख लीजिए, ये सुकून का रिश्ता है। कैसे? हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो अल्लाह ऐसा है जिसने तुमको एक तने वाहिद से पैदा किया यानी आदम, और इसी से इनका जोड़ा बनाया यानी बीबी हव्वा, ताकि वो इस अपने जोड़े से उन्स हासिल करे। ये है बीबी का मुकाम। बीवी सुकून देने वाली चीज का नाम है। शोहर बीवी को सुकून दे, बीवी शोहर को सुकून दे। फिर जब मियाँ ने बीवी से कुर्बत हासिल की तो इसको हमल रह गया हल्का सा, सो वो इसको लिए हुए चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से जो इनका मालिक है दुआ करने लगे। क्या दुआ करने लगे? कि अगर तुमने हमको सही सलामत औलाद दे दी तो हम खूब शुक्र गुजारी करेंगे। फिर क्या हुआ? बस जब अल्लाह ने दोनों को सही सलामत औलाद दे दी तो अल्लाह की दी हुई चीज में वो दोनों अल्लाह के शरीक करार देने लगे। बस अल्लाह पाक है इनके इस शिर्क से। क्या ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा ना कर सके, वो खुद ही पैदा किए गए हों, और वो इनको किसी किस्म की मदद दे नहीं सकते, वो खुद भी मदद नहीं कर सकते? और अगर तुम इनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर ना चले? तुम्हारे एतबार से दोनों अमर बराबर हैं, ख्वाह तुम इनको पुकारो या खामोश रहो। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम जैसे ही बंदे हैं। बस तुम इनको पुकारो, फिर इनको चाहिए कि तुम्हारा कहना पूरा करें। अगर तुम सच्चे हो, क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हों, या इनके हाथ हैं जिनसे वो किसी चीज को थाम सके, या इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हों, या इनके कान हैं जिनसे वो सुनते हों? है ना फितरत को झंझोड़ने वाली आयतें। गौर करो, तदब्बुर करो। आप कह दीजिए, हाँ अपने सब शुरका को बुला लो, फिर मेरी जरा रसानी यानी मुझे नुकसान देने की तदबीर करो, फिर मुझको जरा सी भी मोहलत मत दो। ये एतमाद किसको होता है? जो हक पे होता है। अब इन आयात में कितनी ही बातें हमने समझ ली, आइए थोड़ा सा गौर व फिक्र करते हैं। पहली बात क्या है कि ये दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक्ना इत्तबाहु। कब? जब आपको किसी पे शक हो जाए, कि उसके मोटिव्स ठीक हैं कि नहीं, उसका मनहज ठीक है कि नहीं, वो गलत तो नहीं, ये नहीं, खुल के दुआ मांगी है कि अल्लाह मुझे हक को हक करके दिखा, और अगर वो ठीक है तो मुझे उसकी बात को मानने की तौफीक दे, वारिनल बातिला बातिलन वरजुकना इज्तनाबहु, और अगर वो ठीक नहीं तो मुझे उससे इज्तनाब करने वाला बना दे, यानी मैं अवॉइड कर लूँ बस, फिर उसके बाद जो भी हो अल्लाह जाने और वो जाने, यानी उस बंदे के बीच में से निकल जाइए और उसका मामला अल्लाह ताला पे डाल दीजिए। इसके बाद दूसरी बात जो इसमें है वो नोट कर लीजिए अपने लिए, इताअत गुजारों के लिए अल्लाह की मदद और कुशादगी करीब है, ये अल्लाह का वादा है। गैर अल्लाह से हाजात मांगने वालों को प्यार और मोहब्बत से समझाइए, उनको मुशरिक मुशरिक कहकर दीन से मुतनफिर ना कीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा फिर हम उनको ना रौनत से पुकारते हैं, ओ मुशरिको ओ फासिको, तो ये चीज़ें इंसान की फितरत को अच्छी नहीं लगती। हमेशा लोगों की इज्जत कीजिए चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, इतनी इज्जत दे कि वो खुद परेशान हो जाए कि ये बंदा मुझे क्यों इतनी इज्जत दे रहा है। फिर कुरान की रहनुमाई, गुनाहगार को ऐशो इशरत में देखकर धोखा नहीं खाना, हो सकता है उसकी आजमाइश हो। अगर किसी के वसीले से कोई नेमत मिले तो अल्लाह के साथ उस इंसान का भी शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मल्लम यशकिरिन्ना सलम यशकुरिल्ला, जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी नहीं किया। अल्लाह ताला की रहमतों की खुशखबरी और अजाब से डराना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों में से था, हमने भी इसको मुनासिब तरीके से करना है। गौर व फिक्र की बातें, अल्लाह ताला को अस्माउल हुस्ना से पुकारना है, और अल्लाह के नामों में इल्हाद करने वालों की बातों पर ध्यान नहीं देना। कोई भी जमाना दाई से खाली नहीं रहा, यानी अल्लाह ने हर दौर में कुछ लोगों को चुना हुआ है जो अल्लाह के नबी के इस दीन की दावत देते रहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अपनी जान के नफे का भी इख्तियार नहीं, अकीदा दुरुस्त करना है। हाथों पैरों आंखों और कानों का खसूसी जिक्र, क्योंकि ये इल्म सीखने में काम आते हैं, जैसे कि इस वक्त आप बड़ी मोहब्बत और प्यार से इनको इस्तेमाल करके इस पारे को सुनना चाह रहे हैं। अब सूरत का ततिमा, बड़ी प्यारी सूरत पूरी होने वाली है, और यहाँ आपको ये भी बता दूं कि हमने दो मक्की सूरतें ऑलमोस्ट पढ़ ली, इसके बाद फिर दो मदनी सूरतें आने वाली है। आयत 196 से देखिएगा, इन्ना वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब वहुवा यतवल्लस्सालिहीन, यकीनन मेरा मददगार अल्लाह ताला है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई और वो नेक बंदों की मदद करता है। तुम जिन लोगों के अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी मदद कर सकते हैं, और इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो तो इसको ना सुने, कैसे सुने, बुत तो नहीं सुनते ना, और इनको आप देखते हैं गोया के वो आपको देख रहे हैं हालांकि वो कुछ भी नहीं देखते। ये आजकल जो 5D और 3D स्टैचूज बनते हैं ना, जिधर से भी देखें तो आपको लगता है वो आपको देख रहे हैं, तो वो बड़े नेचुरल से बुत बनाते थे, लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि वो देख तो नहीं सक रहे। आप दरगुजर इख्तियार कीजिए, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से किनारा हो जाएं, ये था अखलाके नबी, अल्लाह हमें भी ऐसा कर दे। और अगर कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया कीजिए, बिला शुबा वो खूब सुनने खूब जानने वाला है। यकीनन जो लोग अल्लाह से डरते हैं, जब इनको, आप जरा पहले अपने आप से पूछिए कि मैं अल्लाह से डरती हूँ, और अगर नहीं है तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें अपना डर और अपना खौफ अता फरमा दे। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं, इनको जब कोई खतरा शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं, बस यका जक इनकी आंखें खुल जाती हैं। ये आंखें पता किसकी खुलती हैं, जिसकी फितरत सलामत होती है। शरीयत के ताबे रखिए अकल को, तो इंशाल्लाह अकल में फतूर और बेगाड़ नहीं आएगा, आपको खुद अपनी गलतियां दिखेंगी। सूरह तगाबुन में आता है, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बा, जो अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है, तो दुआ किया करे कि अल्लाह मुझे सबसे पहले मुझे अपनी गलतियां दिखें ना कि दूसरों को। और जो शयातीन के ताबे हैं, अब ये वो लोग हैं जिनकी फितरत मस्ख हो जाती है, वो इनको गुमराही में खींचे ले जाते हैं, बस वो बाज नहीं आते, और आप जब कोई मौजा इनके सामने जाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मौजा क्यों ना लाए, आप कह दीजिए कि मैं इसकी पैरवी करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा गया। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। दुआ कीजिए हम ईमान वाले हो जाएं। और जब कुरान पढ़ा जाए तो इसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो। तो आज की टिप शुरू में मिल गई थी, तिलावत सुनते हुए फस्तमिउ लहू। और एक शख्स अपने रब की याद किया कर अपने दिल में आजजी के साथ और खौफ के साथ और जोर की आवाज के साथ और कम आवाज के साथ, जोर की आवाज की निस्बत कम आवाज के साथ सुबह और शाम और अहले गफलत में से ना हो जाना। यकीनन जो तेरे रब के नजदीक है कौन? फरिश्ते। वो इसकी इबादत से तकबुर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं और इसको सजदा करते हैं। सुबहान अल्लाह। यहाँ पे आप देखिए 206 आयत पे सलास भी हुआ। तदब्बुर की चंद बातें नोट करिए अमल के नुक्तों के साथ। इस आयत को बकसरत दोहराइए, इन वली अल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल किताब वहुवा यतवल्लस सालिहीन। यानी अगर कोई मुखालफतों का तूफान खड़ा भी हो जाए ना, तो आप कहा करें कि मेरा वली अल्लाह है और वो नेक लोगों का दोस्त है। अगर नेकी में गफलत और बुराई में रग़बत महसूस हो तो अल्लाह की पनाह मांगिए। शैतानी बसवसा आए तो क्या पढ़े? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कैसे पढ़ना है? प्यार से, ढीला डाला, सख्ती से पढ़ा करें। आऊज़ु बिल्लाह, शैतान को डराइए ना कि लाड़ देखें उसके। कुरान की रहनुमाई, इस्लाम अकीदे अखलाक और मामलात का नाम है। बुरी आदत वाले लोगों से दोस्ती और मेल मिलाप से बचिए और उनको अच्छी सी नसीहत कीजिए। किसी ने आपके साथ ज्यादती की हो तो उसे क्या करें? माफ कर दीजिए। इनका जवाब पत्थर से तो नहीं देना। गौर व फिक्र की चंद बातें, नेक मोमिनों का कारसाज अल्लाह है। जहालत का जवाब बदसलूकी से नहीं देना। शैतानी वसवसों से अल्लाह ताला की पनाह तलब करनी है। दिन और रात की घड़ियों में हर लम्हे अल्लाह को याद करना है। या अल्हम्दुलिल्लाह सूरत अल-अराफ पूरी हुई, यहाँ इतने सजदा भी है। पहला सजदा जब भी कर ले, फर्ज तो नहीं है लेकिन इसका अजर बहुत है। अब थोड़ी सी बात, मे बी फ्यू वर्ड्स की सूरत अनफाल की सुनिए। हमने सूरत अल आराफ में 6 नबियों का किस्सा पढ़ा और हर एक पे एक मुख्तलिफ आसमानी आफत आई। कौमे नूह पे तूफान आया, कौमे आद पे हवाएं छोड़ी गईं, कौमे समूद को 3 मुख्तलिफ किस्म की सजाएं मिली, चिंगाड़ की, जलजले की और कुछ और। कौमे लूत पे पत्थर भी बरसाए गए और भी सजाएं मिली। इसी तरह से कौमे मदियन के ऊपर भी जलजला आया और मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन फिरौन को अल्लाह ने पानी में डुबो दिया। वो काम जो पिछले अंबिया कराम को झुटलाने वाली कौमों के साथ आसमानी आफात के जरिए हुआ, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के साथ सहाबा की तलवारों के साथ हुआ। मेरा रे पूरी जंगी हिस्ट्री के लिए ये एक जुमला काफी है। अल्लाह के नबी आखिरी नबी थे जब अरबों ने आपको झुटलाया, मक्का के लोगों ने झुटलाया। अगर अल्लाह अपनी पिछली सुन्नत पे ही चलता, वही बात करता, तो क्या होना था? एक तूफान आता, एक जलजला आता, एक बुछाड़ आती, सारे मक्का के दुश्मन मारे जाते, खत्म। पर आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इस उम्मत को बाकी रखना था। तो ये सूरत अनफाल और आगे तौबा कल के बारे में बहुत अहम बातें हैं, तवज्जो से सुनिएगा। आइए अभी शुरू की आयात को देखते हैं। सिर्फ 40 आयात है। एक सवाल पूछा सहाबा ने, जवाब आपको इस पारे में नहीं मिलना, अगले पारे में मिलना है। लेकिन इन 44 आयतों में आपने अपने लिए अमल के नुक्ते नोट करने हैं, करेक्टर बिल्डिंग के। जब दीन का नाम आ जाए तो सबसे पहले साथियों की तरबियत करो, उनका तस्किया करो, उनकी तरबियत करो। माली मामलात में पढ़ने से पहले अपना स्टैंडर्ड तो देख लो, दिल कितना है, कैलिपर कितना है, हौसला कितना है, कितना तुम्हारा जर्फ है। छोटी छोटी बात पे डर तो नहीं जाओगे, छोटी सी कमिटमेंट पे घबरा तो नहीं जाओगे, या फिर अपनी इन बातों को कहीं लीक आउट तो नहीं करोगे? ये सारा कुछ इसमें है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अनफाल नफल से है, माले गनीमत। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। बंदे मोमिन मैदान जंग में माल जमा करने नहीं जाता, मुल्कों को फतेह करने नहीं जाता, बल्कि या तो वो इस्लाम के गलबे के लिए जाता है या शहीद होने की ख्वाहिश रखता है। या सलून का अनिल अनफाल, ये लोग आपसे गनीमतों का हुक्म दरियाफ्त करते हैं। ये कब हुआ था? गजवे बदर के बाद, पहली जंग थी। पता ही नहीं था कि दुश्मन से जो माल हासिल हो उसके साथ क्या करें, क्योंकि पहले दौर के कुछ और रिवाज थे। तो सहाबा कराम को जब कोई बात ना पता होती तो आके अल्लाह के नबी से पूछते, ये सवाल था। अब जवाब दे दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया? 10वें पारे की पहली आयत वालम गनीमतों में जवाब आएगा। ये 39 आयत, जरा सोचिए, अल्लाह के नबी बैठे और साहब आकर कहते हैं, अल्लाह के नबी वो दुश्मन से बहुत सारा माल मिल गया, बहुत सारा डोनेशन आ गया, चंदा आ गया, मिसाल है, क्या करें? कूल डाउन, काम डाउन, क्या करो? आप फरमा दीजिए कि ये गनीमत है अल्लाह और उसके रसूल के, यानी उनको उधर रख दो, नजर भी ना भरना, हाथ भी ना लगाना। पहले क्या करो, बस तुम अल्लाह से डरो, फिर अपने बाहमी ताल्लुकात की इसलाह करो। तीसरी बात, अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो, और साथ ईमान को बढ़ाने के लिए कहा। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र आता है तो इनके कुलूब डर जाते हैं, और जब अल्लाह ताला की आयतें इनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयतें इनके ईमान को और ज्यादा कर देती हैं। यानी इसको मैं उंगलियों पर गिन रही हूँ, तो ये पांचवी बात है कि ईमान को बढ़ाने के लिए कुरान को सुनो, और वो लोग अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, ये छठी बात है, जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं, सेवन्थ पॉइंट, और हमने इनको जो कुछ दिया वो इसमें से खर्च करते हैं, ये एट पॉइंट। सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, इनके बड़े दर्जे हैं इनके रब के पास, और मग़फ़रत और इज्जत की रोजी है। आठ खूबसूरत पॉइंट्स दे दिए कि जाके पहले अपनी इसलाह करो। चलो चलो बच्चे इन बातों में नहीं बोलते, जाओ पहले आपस में ताल्लुकात तो सही करो, दिल तो सही करो, नमाजें तो पढ़ो, फिर इन कामों में, है ना। इससे पता चलता है कि इस किरदार साजी और करेक्टर बिल्डिंग के बगैर जो लोग दीन का काम करने आते हैं, दुश्मन से कम आपस में ज्यादा लड़ते हैं। इतने कंप्यूटर नहीं किसी के स्कूल में खराब होते हैं जितने लोगों के दिल खराब होते हैं, इतनी खट्टी दाल नहीं पकती उनके जितने लोगों के दिल खट्टे रहते हैं हर वक्त। और जो बड़े जोश से दीन का काम करने निकले थे, थोड़े दिन में लड़ भिड़ के घर बैठ चुके होते हैं, मैं नहीं जाती, मैं नहीं बोलती, मुझे नहीं करना, अल्लाह ने कहा नहीं। ये सहाबा किराम का गिरोह था, ये फौज थी, ये आर्मी थी, 13 साल अल्लाह के नबी ने एक आर्मी की तरबियत की, फिर मैदाने बदर में कूदे वो, तो फिर मदद तो होनी थी। आज बगैर तैयारी, बगैर तकवे, बगैर ईमान, बगैर नमाज, बगैर कुरान के साथ तस्किए के हम जब निकलते हैं तो कुंद छुरियां बन के निकलते हैं। अब यहाँ हल्का सा किस्सा है गज़वाए बदर का। कमा अखरजक रब्बुका मिन बैतिका बिल हक, जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया। और मुसलमानों की एक जमात इसको गिरा समझती थी। बात तो बदर की है, मुझे आपकी लग रही है, पूछे कैसे? सुबह घर से निकले थे ना, यही नियत लेके निकले थे ना कि पारा सुनना है दर कुरान, तो आप भी हक के साथ निकले। आपके शौहर जॉब के लिए निकले, रिस्के हलाल कमाने निकले, तो हक के साथ निकले। दुआ किया करे, अल्लाह घर से जब निकलूं हक के लिए निकलूं। अब ये नहीं कि फजूल चीजें, गुनाह और रसूमात और शॉपिंग और बेपरदगी और पता नहीं किस किस के लिए निकले, तो बंदे का हक बनता है कि वो जब घर से निकले तो हक के लिए निकले। हाँ मुश्किल तो लगता है सुबह सुबह आना, और फिक्रें लगी हुई हैं रमजान में कैसे आएंगे, तो कोई बात नहीं। वो इस हक के बारे में इसके बाद इसका जहूर हो गया था, आपसे इस तरह झगड़ रहे थे गोया को इनको मौत की तरफ आंके लिए जाता है, और वो देख रहे हैं, किसी को लग तो नहीं रहा कि तो मौत इतना मुश्किल है सुबह सुबह निकल कर आना। और तुम लोग उस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला तुमसे इन दो जमातों में से एक का वादा करता था कि वो तुम्हारे हाथ आ जाएगी, और तुम इस तमन्ना में थे कि गैर मुस्लिम जमात तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि अपने अहकाम से हक का हक होना साबित कर दे, और इसी तरह से उन काफिरों की जड़ काट दे ताकि हक का हक और बातिल का बातिल होना साबित कर दे, गो ये मुजरिम लोग नापसंद ही करें। अब इसमें जो बातें, ये तो आप कल सुनेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो अगले पारे में। इस वक्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1,000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो लगातार चले आएंगे, और अल्लाह ताला ने ये इमदाद महज इसलिए की थी कि बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए, और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो कि जबरदस्त हिकमत वाला है। इस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ताला तुम पर ऊंग तारी कर रहा था, ये मैदाने जंग में जो अल्लाह के फजल और करम होते थे ना, उसकी बातें हो रही हैं। अपनी तरफ से चैन देने के लिए और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था कि इस पानी के जरिए से तुमको पाक कर दे और तुमसे शैतानी वसवसे को दूर कर दे, यानी दिलों में शैतान भी कुछ ना कुछ वसवसे डलवा रहा था, और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे पांव जमा दे। इस वक्त को याद करो जबकि आप कर फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। बस तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। मैं भी कुफार के कुलूब में रोब डाले देता हूँ। बस तुम गर्दनों पर मारो और इनकी पोर पोर को मारो। इस बात की सजा है कि उन्होंने अल्लाह की और इसके रसूल की मुखालफत की। हाईलाइट कर लें जुमले को, रसूल की मुखालफत कोई छोटी चीज नहीं होती। और जो अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत करता है, बस बेशक अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। सो ये सजा चखो और जान रखो कि काफिरों के लिए जहन्नुम का अजाब मुकर्रर है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ मैदान जंग के आदाब है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम काफिरों से दू बदू यानी आमने सामने मुकाबिल हो जाओ तो इनसे पुश्त मत फेरना। और जो शख्स इनसे इस मौके पर पुश्त फेरेगा, मगर हाँ जो लड़ाई के लिए पैंथरा बदलता हो या जो अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता हो, तो वो इससे एग्जेम्प्टेड यानी मुस्तस्ना है। बाकी और जो कोई ऐसा करेगा वो अल्लाह के गजब में आ जाएगा। इसका ठिकाना दोजख होगा और वो बहुत बुरी जगह है। यानी मैदान जंग से पलटना कबीरा गुनाह है, क्योंकि आपने इस्लाम की जान को खतरे में डालकर अपनी जान बचाई। तो तदब्बुर और अमल की चंद बातें। दो मुसलमानों में नाराजगी हो तो सुलह की कोशिश कीजिए। खुशकुन खबरें मुसलमानों के दिलों के लिए इत्मीनान का बायस हैं, इसलिए अच्छी अच्छी खबरें दिया करें। नेक काम करने वालों की हौसला अफजाई करें। रहनुमाई के पॉइंट्स। रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी ही असल में ईमान की शर्त है। दिल की मजबूती जिस्मानी मजबूती से अहम है। कई लोग जिस्म के बहुत मजबूत होते हैं लेकिन दिल के कमजोर होते हैं। रोब अल्लाह की खुफिया फौज है, इसको 3 दफा लिखिएगा। रोब, अगर आपका रोब किसी पे पड़ जाए या दुश्मन पर आपका रोब पड़ जाए, ये अल्लाह की मदद होती है। जिसे अल्लाह मुसलमानों के मुकाबले में दुश्मनों के दिलों में डालता है। गौर व फिक्र की बात है, सच्चे और पक्के मोमिन की निशानी कि अल्लाह के जिक्र से इसका दिल हिल जाए। हमारा हिलता है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये अल्लाह से डरने वाली को बातें हो रही हैं। कुरान में गौर व फिक्र ईमान में इजाफे का जरिए। दिल के अमाल जिस्मानी अज़ा के अमाल की बुनियाद है। असबाब को काम में लाना वाजिब है, लेकिन हकीकी मदद अल्लाह की तरफ से आती है। यानी डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह ताला। आगे आयत नंबर 17 से बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैदान जंग में अल्लाह के नबी सल्लम के हाथों के पत्थर कैसे, वो जो कंकर थे वो बुलेट या कह लीजिए कि गोलियां बनकर दुश्मनों की आंखों में चले गए, इसका तस्करा। अल्लाह सुबहाना तआला फरमाते, फलम तक तुलू हूँ वला किन अल्लाह कतलहुम वमा रमई तईज रमई तवला किन अल्लाह रमा। सो तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कत्ल किया, और आपने ख्वाब की मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से इनकी मेहनत का खूब इवज दे। बिला शुबा अल्लाह ताला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। एक बात तो ये हुई और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला को काफिरों की तदबीर को कमजोर करना था। अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वो फैसला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे ही लिए नहायत खूब है, और अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे, और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे जरा भी काम ना आएगी गो कितनी ज्यादा हो। और वाकई बात यह है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला का और इसके रसूल का कहना मानो, और इनका कहना मानने से रूगरदानी मत करो, और तुम सुन लेते ही हो। और तुम इन लोगों की तरह मत हो जाना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते सुनाते कुछ नहीं, यानी सिर्फ दूर से उनके कानों में लफ्ज आ रहे हैं और वो तो अपने काम कर रहे हैं कुछ और। तो कुरान सुनते वक्त दिल दिमाग को साथ रखिए। बेशक बदतरीन खलायक अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जो कि जरा भी नहीं समझते, और अगर अल्लाह ताला इनमें कोई खूबी देखता तो इनको सुनने की तौफीक दे देता, और अब अगर इनको अब सुना दे तो वो जरूर रूगरदानी करेंगे बेरुखी करते हुए। इससे पता चलता है जिस दिल में खैर होती है ना, अल्लाह उसको कुरान सुनवाता है। आपको सुनवाया जा रहा है, आपके लिए खुशखबरी है इसमें कि इंशाल्लाह आपके अंदर की खैर बाहर आएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाओ जबकि रसूल तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्शीश की तरफ बुलाते हो। क्या चीज़ है जो लोगों को जिंदगी देती है? तबलीग और जिहाद, वक्त और हालात के मुताबिक। और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी के और इसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाया करता है, और बिला शुबा तुम सबको अल्लाह ही के पास जमा होना है, और तुम ऐसे वबाल से बचो जो ख़ास इन ही लोगों पर वाक़े ना होगा जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं। और ये जान रखो कि अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है, और इस हालत को याद करो जबकि तुम ज़मीन में कलील थे, कमज़ोर शुमार किए जाते थे, इस अंदेशे में रहते थे कि तुमको लोग नोट खसोट ना लें, बस अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत दी और तुमको नफीस चीज़ें अता की ताकि तुम शुक्र करो। या अय्युल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के हकूक़ में जानते बूझते ख़यानत ना करो और अपनी काबिले हिफाजत चीज़ों में ख़यानत मत करो, और तुम जानते हो। और तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ है, और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह ताला के पास बड़ा भारी अजर है। तो हर बच्चा इम्तिहान का एक पर्चा, जितने बच्चे हैं ना हर एक के साथ लिखा करें, ये मेरा एक इम्तिहान, ये मेरा दूसरा, एक तीसरा। और अगर अल्लाह ने आपको इन इम्तिहानों में नहीं डाला तो क्यों फिक्र करते हैं? अल्लाह की किताब को थाम ले, इसकी भी तो ज़रूरत है आपको मुझे। या अय्युल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको फैसले की चीज़ देगा। ये भी पारे के थीम के साथ है, फुरकान। जब फितरत सलामत रहती है ना तो अंदर से सच्चाई क्या है और झूठ क्या है उसके लिए एक पुकार आती है, और हक और बातिल का फर्क दिखता है बंदे को, और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। और इस वाक्य का भी जिक्र कीजिए जबकि काफिर लोग आपकी निस्बत तदबीर सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें, या आपको कतर कर डालें, या आपको खारिज वतन कर दें। ये हिजरत की रात जो प्लॉटिंग हो रही थी उसकी तरफ इशारा है, और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह अपनी तदबीर कर रहा था, और सबसे ज़्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह है। और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो इसके बराबर हम भी कह दें। ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनद बातें हैं जो पहलों से नकल दर नकल चली आ रही हैं। और जबकि इन लोगों ने कहा, अब ये अबू जहल का एक कॉल था, उसके ऊपर तबसरा है, अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाकई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा, या हम पर कोई दर्दनाक अजाब वाक़े कर दे, और अल्लाह ताला ऐसा न करेगा कि इनमें आपके होते हुए इनको अजाब दे, और अल्लाह ताला इनको अजाब ना देगा ऐसी हालत में कि वो इस्तग़फार भी करते रहे। दो चीज़ें हैं अल्लाह की तरफ से निजात की, पनाह की, नबी का वजूद और लोगों का इस्तग़फार करते रहना। तो ज़रा शऊर से बोलिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन वअतूबु इलैह। और अल्लाह ताला ऐसा ना करेगा कि इनमें आपके होते हुए इनको अजाब दे, और अल्लाह इनको अजाब ना देगा इस हालत में कि वो इस्तग़फार करते रहें। तदब्बुर और अमल इन आयात पे, बकदरे ताकत गुनाहों से ज़रूर रुकिए, खामोश मत रहिए, गूंगा शैतान नहीं बनना, दीन पर साबित कदमी की दुआएं करते रहना, किसी लम्हे भी दिल पलट सकता है। या मुकल्लिबल कुलूब इस्सब्बित कल्बी अला दीनिक, अपनी औलाद और अफराद खाना को नमाज का आदी बनाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। तौबा के बाद दोबारा गुनाह करने पर दोबारा भी मुसीबत आ सकती है, ये कुरानी रहनुमाई का नुक्ता। हम कहते हैं शुक्र है, शादी वाली जो मर्जी कर लो, काम काम तो हो गया ना। याद रखिए भी आपको अल्लाह से और भी बड़े काम है, अभी इस जोड़े का दिल भी जुड़े, इनको अल्लाह नस्ल दे, तो शादियों पर ऐसी नाफरमानियां नहीं करनी चाहिए कि गोया के अल्लाह से कोई और काम ही नहीं है। तौबा में ताखीर तौबा से महरूमी का सबब बन जाती है, गाइडेंस डिले, गाइडेंस डिनाइड। फुरकान दिल का नूर है जिससे अल्लाह का तकवा मिलता है, और फितरत पे पड़े हुए पर्दे हटते हैं। गौर व फिक्र की बातें हर सुनने और समझने में खैर नहीं, बहुत से लोग सुन तो लेते हैं लेकिन अमल नहीं करते। दिल अल्लाह के हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं। माल और औलाद आजमाइश है कि क्या तुम इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, या इनमें खो कर अल्लाह से गाफिल हो जाते हो, यानी इन्हीं खिलौनों से खेलते हुए अब तुम्हें अल्लाह के लिए वक्त ही नहीं मिलता। तकवा वाला हक और बातिल की पहचान आसानी से कर लेता है। और अब आखिरी आयतें पारे की, आयत 34 से, वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु वहुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम। और इनमें क्या बात है कि इनको अल्लाह ताला सजा ना दे, हालांकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं, जबकि वो लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली नहीं, इसके मुतवल्ली तो सिवाय मुत्तकियों के और अशखास नहीं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। और इनकी नमाज काबा के पास सिर्फ ये थी, सीटियाँ बजाना और तालियाँ बजाना। आज भी ऐसी कोई इबादत है जिसमें ये दो काम किए जाते हैं? और कई लोग उसको इबादत के नाम पे करते हैं जी, कवालियाँ, विस्लिंग भी होती, तालियां भी पीटी जाती, तो ये तो अरबों की कोई, मक्का वालों की कोई सुन्नत होगी। अल्लाह के नबी और सहाबा ने तो ऐसी कोई इबादत नहीं की। सो अपने कुफर के सबब इस अजाब का मजा चखो। बिलाशुबा ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोकें, बस ये लोग तो अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल इनके हक में बायस हसरत हो जाएंगे, फिर मकलूब हो जाएंगे और काफिर लोगों को दोजख की तरफ जमा किया जाएगा, ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, बस इन सब को इकट्ठा ढेर कर दे, फिर इन सब को जहन्नुम में डाल दे। ऐसे लोग पूरे खसारे में, जैसे कुछ सारे शहर का कचरा इकट्ठा करके आग लगा दे, यानी जहन्नुम की कुछ इसी किस्म की मंजर कशी हो रही है। आप इन काफिरों से कह दीजिए कि अगर ये लोग बाज आ जाएं तो इनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके हैं माफ कर दिए जाएंगे। यह है इस्लाम की खूबसूरती। और अगर अपनी वही आदत बाकी रखेंगे तो कुफारे साबिकीन के हक में कानून नाफिज हो चुका है, और तुम इनसे इस हद तक लड़ो कि इनमें फसादे अकीदा ना रहे और दीन अल्लाह ही का हो जाए। फिर अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह ताला इनके अमाल को खूब देखता है, और अगर वो मुंह फेर लें तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है, और वो बहुत अच्छा कारसाज है और बहुत अच्छा मददगार। क्या पता चला? तदब्बुर और अमल, अल्लाह के तकर्रुब की नीयत से कुछ सदका कीजिए। आज ही से अल्लाह से सच्ची तौबा करें और अपने गुनाहों को गिनना शुरू कर दें, 1 2 3 करके। फिर हर दिन हमें एहसास होगा कि हम कितने गुनाह करते हैं, और उसमें से भी बहुत सारे हमें पता ही नहीं चलने कि ये भी गुनाह है, इतने भोले हैं लोग। गुनाहों में मुबतला अफराद को तौबा की रग़बत दिलाइए और खुशखबरी दीजिए कि अगर वो तौबा कर लें तो अल्लाह ताला इनको माफ़ कर देगा। कुरानी रहनुमाई, अल्लाह के रास्ते से रोकने वालों के मालों की कसरत से धोखा न खाएं। शिर्क का वाक़े होना और इसका किसी इलाके में आम हो जाना सबसे बड़ा फितना है। जब मददगार सिर्फ अल्लाह ताला है तो फिर किसी और का डर और खौफ कैसा? गौर व फिक्र, अहले ईमान जो शिर्क से बचते हैं वही बैतुल्लाह के मुतवल्ली यानी केयर टेकर हैं। काफिर के माल खर्च करने का मकसद हक को बातिल साबित करना है, हमने हक को हक साबित करने के लिए माल खर्च करना है, जिहाद फी सबीलिल्लाह का मकसद दीन इस्लाम को गालिब करना है। जिसका दोस्त और मददगार अल्लाह हो उसे किसी का डर नहीं रहता। तो यहाँ 40 आयतों तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया गया, यानी सहाबा ने सवाल किया था अनफाल के बारे में, या सलूना का नील अनफाल, 40 आयतों के बाद 41 यानी 41 आयत से इसका जवाब 10वें पारे में आएगा। इंशाल्लाह ये जो सूरत का शुरू है इसको हम अगले पारे के साथ लेकर चलेंगे। मतरूक सुन्नतों से कुछ फ़ायदा हो रहा है? शऊर के साथ आज की सुन्नत है चाश्त की नमाज। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे मेरे खलील ने 3 चीज़ों की तलकीन फरमाई, हर माह 3 रोज़े रखने की, चाश्त की 2 रकतों की, और इस बात की कि सोने से पहले वितर पढ़ लिया करूं। सही मुस्लिम 1672 721, 2 जगह यह हदीस है। तो 3 काम है आज आपके लिए। आज आप देखिए कि लोग महीने के 3 रोज़े यानी यामे 20 के, 13 14 15, वो आसानी है, वरना बास कहते हैं कि पूरे महीने में कभी भी 3 रोज़े रख लीजिए। चाश्त का वक्त कौन सा होता है? जब सूरज खुल जाता है 9 10 बजे, यानी बहुत धूप भी नहीं और बिल्कुल मलगजा भी नहीं है। तो दो दो करके 4 रकत पढ़िए, जिस्म के जोड़ों का सदका है। अल्लाह आपको मुझे सबको तौफीक दे, यानी ये जो नी रिप्लेसमेंट होती है और जॉइंट्स के पेन्स हैं उसका ये इलाज है। और सोने से पहले वितर पढ़ लिया करूं, क्योंकि नहीं पता कि सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।